पृष्ठ संख्या 182 त्रयोदश अध्याय का तृतीय भाग। कांट ने तत्वमीमांसा के पूर्व ज्ञान मीमांसा आवश्यक समझी। आलोचनात्मक दर्शन के लिए बुद्धिवाद तथा अनुभववाद के दोषों से बचने के लिए पहले हमारे ज्ञान की उत्पत्ति, प्रमाण और सीमा जान लेना अत्यावश्यक है। कांट के अनुसार ज्ञान की उत्पत्ति इंद्रिय संवेदन और बुद्धि विकल्प दोनों के सम्मिश्रण से होती है। इंद्रिय संवेदनों से ज्ञान में सत्यत्व और बुद्धि विकल्पों से सार्वभौमता तथा अनिवार्यता आती है। प्रामाण्य के विषय में वही ज्ञान प्रामाणिक है जो पारमार्थिक स्वलक्षणों द्वारा उत्थापित किया जाए, अर्थात जिसकी सामग्री इंद्रिय संवेदनों के रूप में पारमार्थिक स्वलक्षण प्रस्तुत करे और जिस सामग्री को बुद्धि विकल्प सार्वभौम निश्चय प्रदान करे। संयोजक और अनुभव निरपेक्ष ज्ञान ही प्रामाणिक है। सीमा के विषय में ज्ञान व्यवहार तक ही सीमित रहता है, परमार्थ तक उसकी पहुंच नहीं। गणित और भौतिक विज्ञानों में संयोजक तथा अनुभव निरपेक्ष ज्ञान संभव है, अतः यह ज्ञान सत्य और सार्वभौम है। दर्शन के व्यवहारिक क्षेत्र में भी यह ज्ञान संभव है, किंतु दर्शन के पारमार्थिक क्षेत्र में यह ज्ञान संभव नहीं। इन सिद्धांतों के कारण शुद्ध ज्ञान की परीक्षा नामक ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पृष्ठ संख्या 183। प्रथम भाग का नाम इंद्रिय संवेदन परीक्षा या ट्रांसेंडेंटल एस्थेटिक है। द्वितीय भाग का नाम बुद्धि विकल्प परीक्षा या ट्रांसेंडेंटल एनालिटिक है। तृतीय भाग का नाम प्रज्ञा परीक्षा ट्रांसेंडेंटल डायलेक्टिक है। अब हम इन 3 भागों को क्रमशः विवेचन करेंगे। पहले इंद्रिय संवेदन परीक्षा को लें। हमारा ज्ञान इंद्रिय संवेदन और बुद्धि विकल्प के मिश्रण से बनता है। इंद्रिय संवेदन के रूप में ज्ञान की सामग्री प्रस्तुत करती हैं और बुद्धि अपने सहज विकल्पों से इन असंबद्ध संवेदनों को संबद्ध बनाकर इन्हें ज्ञान का रूप देती है। ज्ञान बनने के लिए संवेदनों को बुद्धि विकल्पों के सांचों में ढलना पड़ता है। कांट के अनुसार इंद्रिय संवेदन और बुद्धि विकल्प के बीच में 2 द्वार है जिनका नाम है देश और काल। इंद्रिय संवेदन इन दोनों द्वारों में होते हुए बुद्धि विकल्पों तक पहुँचते हैं। संवेदन सीधे विकल्पों तक नहीं पहुँच सकते, वहाँ जाने के लिए संवेदनों को देश और काल के द्वारों में होकर निकलना पड़ता है। तब वे विकल्पों के सांचों में ढलकर ज्ञान का रूप लेते हैं। देश और काल का आवरण लेकर ही इंद्रिय संवेदन बुद्धि विकल्पों तक पहुँचते हैं। देश और काल बाह्य पदार्थ नहीं हैं, ये हमारे ही मानसिक चश्मे हैं जिनको लगाकर हम बाह्य जगत को देख सकते हैं। हमारा बाह्य जगत का ज्ञान अनिवार्यतया दिक्काल परिच्छिन्न है, अतः हम परमार्थों का वास्तविक स्वरूप नहीं जान सकते। हम तो हमारी दुनिया को ही देख सकते हैं जिस पर देश और काल का आवरण पड़ा हुआ है। बाह्य जगत के साथ हमारा परिचय इंद्रियों के द्वारा होता है। इंद्रियों के उपादान गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द हैं। अतः बाह्य जगत हमारे लिए इन पांच प्रकार के संवेदनों से ही बनता है। लॉक के अनुसार इन संवेदनों में बाह्य पदार्थों के वास्तविक गुणों का प्रतिबिंब पड़ता है। ये प्रतिबिंब विज्ञान कहलाते हैं और हम इन्हीं को जानते हैं। बाह्य पदार्थों से हमारा साक्षात नहीं होता। बर्कले के अनुसार भी हम अपने विज्ञानों को ही जान सकते हैं। संवेदन बाह्य पदार्थों द्वारा उत्पन्न न होकर ईश्वर के दिव्य विज्ञानों द्वारा उत्पन्न होते हैं और हमारी आत्मा इनको ग्रहण करती है। ह्यूम के अनुसार हम केवल संवेदनों और विज्ञानों को ही जानते हैं। ये संवेदन किस प्रकार और किस कारण उत्पन्न होते हैं यह हमारे लिए अज्ञेय है। कांट के अनुसार भी हमारे ज्ञान की सामग्री इंद्रिय संवेदनों के रूप में प्रस्तुत होती है और जिन वास्तविक अर्थों या पदार्थों द्वारा ये संवेदन उत्पन्न किए जाते हैं उनको हम नहीं जान सकते। पृष्ठ संख्या 184। किंतु जहां लॉक, बर्कले और ह्यूम के अनुसार ये संवेदन समूह ही वस्तुओं के रूप में परिणत होते हैं, वहां कांट के अनुसार ये संवेदन समूह अस्त व्यस्त, असक्त, अर्थहीन, असंबद्ध और क्षणिक हैं एवं इनमें वह सामर्थ्य नहीं कि ये स्वयं ज्ञान के रूप में परिणत हो सके। हमारी आत्मा निष्क्रिय होकर इनका ग्रहण नहीं करती, वह सक्रिय होकर इनको व्यवस्थित और नियमित बनाती है। बुद्धि का कार्य चींटियों के समान सामान जुटाना ही नहीं है और न मकड़ियों के समान अपने भीतर से ही तंतु उत्पन्न करके जाला बुनना है। बुद्धि का कार्य मधुमक्खियों के समान सामान को संग्रहित करके उसका समन्वय करना और उसको दूसरा नया रूप देना है। जैसे मधुमक्खियां फूलों के रसों को मधु में परिणत करती हैं, वैसे ही बुद्धि इंद्रिय संवेदनों को ज्ञान के रूप में परिणत करती है। शक्ति बुद्धि में है, संवेदनों में नहीं। और इसके पहले कि ये संवेदन बुद्ध विकल्पों के सांचों में ढलकर ज्ञान के रूप में निकलें, यह आवश्यक है कि ये संवेदन देश और काल के द्वारों में से निकलकर बुद्ध विकल्पों तक पहुँचे। देश और काल अनुभव जन्य नहीं है और न ये बाह्य पदार्थ हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वारा हैं और इनके अंदर से निकलकर ही संवेदन अनुभव का रूप ले सकते हैं। अनुभूत होने के लिए बाह्य जगत को देश और काल दोनों द्वारों में से निकलना पड़ता है और आंतर जगत को केवल काल के द्वार से। कांट ने देश और काल की व्याख्या इस प्रकार की है, देश और काल न तो इंद्रिय संवेदन रूप है और न बुद्ध विकल्प रूप, ये प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वार हैं जिनमें से निकलकर संवेदन बुद्ध तक पहुँचते हैं और विकल्पों के सांचों में ढलकर ज्ञान का रूप लेते हैं। देश और काल अनुभव निरपेक्ष है किंतु बुद्ध विकल्प नहीं है, ये इंद्रिय संवेदन भी नहीं है और न उनके समान बाह्य पदार्थों द्वारा उत्थापित किए जाते हैं। यदि हम अपने ज्ञान में से इंद्रिय संवेदन का अंश और बुद्ध विकल्प का अंश निकाल दें तो केवल देश और काल बच रहते हैं। अनुभव के आधार पर हम देश काल की कल्पना नहीं करते हैं। हम देश काल के कारण ही अनुभव कर सकते हैं। वस्तुओं के देशगत होने का अनुभव है उनके आगे पीछे यहाँ वहाँ पास दूर आदि होने का अनुभव। यह अनुभव देशत्व के अनुभव के बिना नहीं हो सकता। पहले देशत्व का अनुभव होता है, फिर वस्तुओं के यहाँ या वहाँ होने का अनुभव। बाह्य पदार्थ की प्रतीति देशत्व की प्रतीति के बिना हो ही नहीं सकती। प्रत्येक बाह्य पदार्थ के अनुभव के लिए उसका यहाँ वहाँ पास दूर आगे पीछे आदि होना अनिवार्य है। पृष्ठ संख्या 185। इसी प्रकार वस्तुओं या घटनाओं की सहस्थिति या पूर्वापर क्रम अथवा अनंतर का अनुभव कालत्व के अनुभव के बिना नहीं हो सकता। पहले काल का अनुभव होगा और फिर सहस्थिति या अनंतर का। काल के अनुभव के बिना किसी भी पदार्थ या घटना का, चाहे वह बाह्य हो चाहे मानसिक, अनुभव नहीं हो सकता। यदि देश और काल का अनुभव न हो तो हमें देशगत और कालगत संबंधों का अनुभव भी नहीं हो सकता। हम किसी विशेष देश या विशेष काल के अनुभव को अपनी कल्पना से पृथक कर सकते हैं, किंतु देशत्व या काल तत्व की भावना को हम अपने अनुभव से कभी पृथक नहीं कर सकते। देश और काल की कल्पना इंद्रिय अनुभव के आधार पर नहीं की जाती, अपितु स्वयं इंद्रिय अनुभव देश और काल द्वारा आवृत होकर ही अनुभव बन सकता है। अतः देश और काल अनुभव जन्य न होकर अनुभव निरपेक्ष है और अनुभव इन्हीं के कारण संभव होता है। अनुभव निरपेक्ष होने पर भी देश और काल बुद्ध विकल्प नहीं है, ये शुद्ध संवेदन मात्र है, किंतु अनुभव जन्य इंद्रिय संवेदन नहीं है। देश और काल दोनों अखंड असीम और अनंत है, इनके खंड या विभाजन नहीं हो सकते। विभिन्न देशों और विभिन्न कालों की कल्पना हमारी कल्पना मात्र है। प्रत्यक्ष अनुभव रूप होने के कारण इनको विशुद्ध संवेदन कहा जाता है। ये निर्विकल्प प्रत्यक्ष रूप हैं, सविकल्प बुद्ध रूप नहीं, फिर भी ये अनुभव निरपेक्ष और सार्वभौम है। बुद्धि के विकल्प सामान्य विज्ञान रूप होते हैं, किंतु देश काल की प्रतीति सामान्य विकल्प के रूप में न होकर विशेष निर्विकल्प प्रत्यक्ष के रूप में होती है। देश में और कल्पित देश खंडों में अनंत और शांत का संबंध है, सामान्य और विशेष का संबंध नहीं। जो संबंध गोत्व जात में और एक विशेष गांव में है, वह संबंध देशत्व में और एक देश खंड में नहीं है। यदि ऐसा हो तो देश बुद्ध विकल्प हो जाएगा। इसी प्रकार काल और काल खंडों का संबंध समझना चाहिए। देश और काल की प्रत्यक्ष प्रतीति होती है, इनको सविकल्प बुद्धि से नहीं समझाया जा सकता। इधर उधर, यहाँ वहाँ, पास दूर, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाहिने बाएं और अब तब, नया पुराना, बालक वृद्ध आदि का प्रत्यक्ष प्रतीति होती है। यदि किसी व्यक्ति को यह प्रतीति न हो तो उसे किसी प्रकार के तर्क से यह प्रतीति नहीं कराई जा सकती। देश और काल बाह्य पदार्थ नहीं है, ये हमारे मानसिक धर्म हैं। ये प्रत्यक्षानुभूत के द्वार हैं, जिनमें होकर संवेदन ज्ञान बनने के लिए बुद्ध विकल्पों तक जाता है। पृष्ठ संख्या 186। किंतु मानसिक धर्म होने पर भी ये किसी व्यक्ति विशेष की कल्पना नहीं है। इनकी सत्ता सार्वभौम और अनुभव के लिए अनिवार्य है। देश और काल के कारण ही हमारा अनुभव संभव होता है। सारा अनुभव काल के द्वार में से और बाह्य जगत का अनुभव काल और देश दोनों द्वारों में से निकलकर ज्ञान बन सकता है। प्रत्येक अनुभव, चाहे वह बाह्य जगत का हो, चाहे मानसिक अवस्थाओं का, काल से आवृत होकर ही हो सकता है। इसके अतिरिक्त बाह्य जगत के अनुभव को देश से भी आवृत होना पड़ता है। ये वे चश्मे हैं जिनको लगाकर ही हम वस्तुओं या घटनाओं को देख सकते हैं। हमारे व्यवहारिक विश्व का दिक्काल व छिन्न होना अनिवार्य है। परमार्थ तक देश और काल की गति नहीं है। हम यह नहीं कह सकते कि जो कुछ भी सत हो वह दिक्कालावच्छिन्न है। हम केवल यही कह सकते हैं कि जिसका ज्ञान हमें हो सकता है वह दिक्कालावच्छिन्न है। अतः परमार्थ हमारे लिए अज्ञेय है। देश काल की सत्ता व्यवहार के लिए वास्तविक और परमार्थ के लिए काल्पनिक है। हमें सत्य ज्ञान व्यवहार का ही हो सकता है, क्योंकि इसकी सामग्री इंद्रिय संवेदनों से आती है और इन संवेदनों के संवादी परमार्थ विद्यमान होते हैं। संवेदन देश काल के द्वारों में से निकलकर और बुद्ध विकल्पों के सांचों में ढलकर ज्ञान का रूप लेते हैं। अतः जहाँ संवेदन है वहीं देश काल की सत्ता वास्तविक है। जो पदार्थ अतिंद्रिय और जिनका संवेदन नहीं होता, उन परमार्थों के लिए देश काल की कोई सत्ता नहीं। कुछ लोग देश काल को बाह्य पदार्थ मानते हैं और कुछ लोग केवल संबंध। दोनों ही मत गलत है। देश काल हमारे मानसिक धर्म है। किंतु सार्वभौम हैं और अनुभव निरपेक्ष हैं। देश काल के कारण ही गणित शास्त्र की प्रतिज्ञाएं संयोजक और अनुभव निरपेक्ष होती हैं। देश काल के कारण ही उनमें सार्वभौमता और निश्चयात्मकता आती है। रेखागणित देश पर निर्भर है, अंकगणित काल पर निर्भर है। यंत्र गति का विज्ञान या मैकेनिक्स देश और काल दोनों पर निर्भर है। यह हुई देश काल की व्याख्या। किंतु ज्ञान बनने के लिए इंद्रिय संवेदनों का देश और काल द्वारा व्याकृत होना ही पर्याप्त नहीं है। देश और काल के द्वारों में से निकलकर संवेदनों का बुद्धि तक पहुँचना और बुद्ध विकल्प के सांचों में ढलकर ज्ञान के रूप में परिणत होना भी आवश्यक है।